अंतय में होगा, तेरा बदला वहां दिलाऊंगा, अब इसको कुछ मत कह, वापिस जा और अपनी मां को सत्य सत्य बता देना, यदि झूठ बोला तो तेरी हालत भी ब्रह्मा जैसी हो जाएगी। विष्णु जी वापस आ गए। दुर्गा ने पूछा, बेटा पिता के दर्शन हुए तुझे? विष्णु जी ने कहा, नहीं मां, मुझे दर्शन नहीं हुए। सीने से लगा लिया दुर्गा ने, कहा, बेटा तू सत्वादी होगा और तेरी जग में आदर सत्कार होगा, अब मैं तुझे तेरे पिता के दर्शन कराती हूं, मैं तेरे से प्रसन्न हुई हूं। कहा कि अंदर ध्यान लगा, सेंसरार कमल में पहुंच जा, वहां देख 1000 ज्योति जग रही है ना, ये झलमल झलमल जो ज्योति हो रही है ये तेरा पिता है। अब ये इन्यो मीठी गोड़ी दे रहा की सब ताई, वो चक्कर दिखा दिया इसमें, सेंसरार कमल या चोटी के पास है ये, और ऐसा गोल गोल से उसमें 1000 पंखड़ी है, कमल कैसी आतड़ी सी, कमल के फूल जैसी पतियों की, 1000 पतियों का एक कमल फूल बना हुआ है और उस 1000 पतियां वहां जगती रहती हैं। कहती है, यू है मेरे पिता का स्वरूप। विष्णु जी राजी हो गया, खिलौना देके तो हो गए पिता के दर्शन। बस फिर गई है शंकर के पास, शंकर से कहा कि बेटा तू भी अपने पिता का की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में समाधि सोकर बैठ जाओ, तुम पहले ही कर करा लो अपना जो तुमने करना है, और सुन ले, तेरे दोनों भाइयों को तो भगवान मिला नहीं, उन्होंने तो खूब प्रयत्न कर दिया। तो शंकर भगवान समझदार निकले इस बात में, उन्होंने कहा, माता जब हमारे दोनों मेरे दोनों भाइयों को प्रभु नहीं मिला तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता, मैं तो माता प्रयत्न ही नहीं करता, लेकिन मां मेरे पे एक मेहर कर दो, आप एक वर दे दो मुझे। दुर्गा ने कहा, बोल बेटा, क्या वर तू? कि मुझे मृत्युंजय कर दे, मैं काफी ना मरूं, मुझे अजरो अमर बना दे, मेरी मृत्यु ना हो। दुर्गा कहने लगी, बेटा ये मेरी पावर से बाहर की बात है, इस 21 ब्रह्मांड में ऐसा कोई समर्थ शक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर के जो इस जन्म और मृत्यु के रोग न बंद कर दे, खत्म कर दे। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा बेटा, ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ, तुझे एक विधि बताती हूँ जिस कारण तेरी आयु सबसे बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। शंकर भगवान ने कहा, यही कृपा कर दो मां, मेरी आयु लंबी हो जाए। दुर्गा ने बताया कि बेटा तू ज्यादातर समाधिस्थ रहा कर, श्वास कम लिया कर, श्वासों को दसवें द्वार पर पहुंचा लिया कर, जिससे तेरी आयु ज्यादा लंबी हो जाएगी। यही कारण है कि भगवान शंकर ज्यादातर समाधिस्थ रहते हैं। सात विष्णु, सात ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु होती है, सात विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, और फिर भी मृत्यु होती है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंते, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी इनकी मृत्यु है। अब दुर्गा ने तीनों से कहा कि बेटा तुम मेरे से शादी करो। तीनों पुत्र कहने लगे, मां ऐसा जुल्म माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहां अग्ध होई, इस पाप को हम कहां दोएंगे मां, ये क्या बात कही आपने। दुर्गा ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारी बुद्धि चेक करूं थी कि तुम कितने अकलमंद हो, या उन्हें इतने लंबे तगड़े हो गए हो, कुछ विवेक भी रखते हो। तुम जाओ बेटा सागर मंथन करो, और वहां से तुम्हें एक एक वस्तु मिलेगी, उनकी पहचान अलग अलग करके लाना, पहले कौन सी, दूसरे कौन सी, तीसरी वस्तु कौन निकली है। वहां जाकर के कॉल ने पहले ही अपनी सारी व्यवस्था कर रखी थी, एक कुरम रूप धार के नीचे आप एक कछुआ रूप बना के ऊपर एक पर्वत रख दिया, उस पर्वत के चारों तरफ एक शेष नाग के लपेटा ला दिया। इन तीनों ने पकड़ कर ऐसे जरा सा हिला था, वो सारा सिस्टम कर ही रखा था उसने। उसमें से तीन लड़कियां निकली, इस दुर्गा ने अपने ही तीन अन्य रूप बनाए, अपने ही अंदर से तीन लड़कियां उत्पन्न की। तीनों को अलग अलग पहचान करके घर ले आए। दुर्गा ने जो पहले निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से शादी कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से शादी कर दी। तीसरी का नाम उमा रखा, शंकर पे ब्याह दी। और तीनों को एक एक लड़की दे करके एक एक द्वीप में छोड़ दिया, लोक में छोड़ दिया। यहां से काल की सृष्टि प्रारंभ हुई, सुर और असुर दोनों ही उत्पन्न हुए। अब आपको देवी भागवत महापुराण में प्रमाण दिखाता हूं कि दुर्गा ने इन तीनों का विवाह किया। एक को लक्ष्मी दी, एक को सावित्री दी, एक को उमा दी। ये देखिएगा देवी भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके तीसरे स्कंद में आप देख रहे हैं। यहां आपको दिखाते हैं, ये तीसरा स्कंद ही चल रहा है। यहां देखो, नीचे नीचे आओ। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो, यानी जाओ। यहां देखो, ये नीचे नीचे। देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। नीचे देखो, परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो, महादेव तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, परमात्मा शांत स्वरूप है, उनके सद्गुण प्रधान हैं, तुम्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीनों तीन गुणों से प्रसन्न हो, वैसे यह उत्पन्न लिखना है, उत्पन्न हो, सृष्टि स्थिति और सहार तुम्हारे कार्य हैं। यहां देखो, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम शीघ्र जाओ। अब ये क्या कहता है कि तीनों को एक एक पत्नी देकर के दुर्गा कहती है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे सुमन करोगे, मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा उस सनातन परमात्मा का, ये काल को सनातन परमात्मा कहते हैं, मेरा तथा उस सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का श्रवण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य से धोने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अय है, देख कितना कमाल हो गया। यहां पीछे देखो, यहां ब्रह्मा पूछता है कि माता, जो वेद में लिखा है वो परमात्मा तुम ही हो क्या? फिर एकम अद्वितीयम, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात है। इस प्रकार देवताओं और अनुभव अत्यंत विशेष विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीयम ब्रह्म है तो क्या वह आत्मा स्वरूप तुम ही हो, आत्म स्वरूपा तुम ही हो, अथवा वह कोई और पुरुष है। मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। यहाँ देखो, इधर ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है। कितनी मीठी घोड़ी दे है, चौड़े में झूठ बोलने सारे। ये कहती है, मैं और ब्रह्म एक ही है, मुझ में और इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं मैं हूँ, और जो मैं हूँ वे, मैं हूँ वही वे। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। बता, वो अकलो इन्हों का चौड़े में कह रही है, हर भ्रम है, इसलिए तुम दो समझ रहे हो, हम एक ही हैं। और देखो, हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जानना जानता है। ओए है, ये देखो, हम लोगों के यानी मेरे और काल के जो न्यारे न्यारे मुझे समझता है, मुझे बता सकता है, हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही वो तत्व ज्ञानी संत है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है, पुरुष है। जो हमें न्यारा न्यारा बता दे, एक तरफ तक कह रही है कि हम और वो एक कहे, बुद्धि के कारण ब्रह्म दो लगते हैं, और मेरा और उस ब्रह्म ने जो न्यारा न्यारा बता देगा वो विद्वान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है, केवल संसार रचने के साथ साथ वह द्वितीय रूप को प्राप्त होता है। अब ये क्या बताती है कि जो इस भेद ने मेरे और काल ने हमें दो प्रमाण कर देगा, आए है, तो वो परमात्मा, वो सही बुद्धिमान पुरुष है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। आगे देखना, अब वहां तो कह रही है कि मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं। और यहां कहती है कि तुम दोनों जाओ। यहाँ देखो, इसी इन्हीं की बातों से इन्हीं का प्रमाण मिल जाता है। अब दुर्गा कहती है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे, मैं तो सामने आ जाऊंगी। और देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का, ओए है, ब्रह्म का, क्योंकि मैं और वो ब्रह्म एक ही है, यहाँ दो हो गए, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का, वहां तो एक के उलझ पुलझ करे थी, और यहाँ दो बता रही है, हम दोनों का श्रवण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र संदेह नहीं रहेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचरण वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए मां लक्ष्मी, शंकर के लिए महाकाली और मेरे लिए महासरस्वती पत्नी को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थान पर हमें तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वही द्वीप, वह देवी और सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। इससे क्या सिद्ध हुआ, इन तीनों का ब्याह कर दिया और दुर्गा ने यहां भेज दिया, और परमात्मा ने ये पहले ही अपना मौखिक बताया था 600 वर्ष पहले, लेकिन इन निकम्मी आत्माओं ने यह सच्चाई ऊपर आन नहीं दी। अब आपको गीता जी में दिखाते हैं कि दुर्गा और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब ये लगातार उसी का प्रकरण चल रहा है। देखिएगा ये श्रीमद देवी भागवत श्रीमद भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसका लेखक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। यहाँ देखना गीता प्रेस गोरखपुर और ये 14वां अध्याय, अध्याय नंबर 14 और यहाँ देखो तीसरा मंत्र। हे अर्जुन, मेरी महत प्रकृति ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, ये मूल प्रकृति है भूतों की यानी सभी भी प्राणियों की, योनि मन गर्भाधान स्थान है, मैं अहम मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस ततः माने उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, सब भूतों भूत प्राणी भी कहते भूतों को। यहाँ देखना, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं उनकी यह प्रकृति दुर्गा उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यहां देखो है, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तम गुण शिव जी, ये भी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात ये कर्मा के अनुसार बंधन में बांधते हैं, कर्म आधार पर यही जीव को यहाँ उलझ पुलझ रखते हैं जो दुर्गा से तीनों उत्पन्न हुई। ये तीनों गुण कौन है अब इसके साथ साथ ये भी प्रमाण आपको देना होगा, क्योंकि हम ज्यादा जड़ बना दिए, माने हमारी बुद्धि गति जड़ कर रखी है, भक्ति मार्ग से दूर कर दी, शास्त्रों विरुद्ध मन भर भर के हमें मूर्ख बना दिया। अब सत्य को आंखों देखकर भी हम नहीं मान पाते, कुछ दिन तो हम न्यूट्रल हो जाते हैं, माइंड हमारा शून्य हो जाता है। बहन भाई जो भी यहाँ सत्संग में आ रहे हैं वो कहते हैं, हे भगवान, ऐसा निर्मल ज्ञान आंखों देखकर भी मन मानने को तैयार नहीं था कि ये सचमुच हम सच देख रहे हैं पुराणों में, क्योंकि आज तक हम हमारे को किसी ने बताया ही नहीं था। अब देखना अपने सदग्रंथ क्या प्रमाण दे रहे हैं, कितना प्यारा प्रमाण दे रहे हैं। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये देवी भागवत महाप्राण आपको फिर प्रमाण करेगी। ये तो केवल अनुवाद किया गया है, हिंदी हिंदी है, और इसमें परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी है कि अभी ये शास्त्र जो के तो मिल गए। इनमें संस्कृत भी है, साथ में अनुवाद हिंदी से में भी किया हुआ है, और कितना प्यारा अनुवाद किया है भगवान। ये देखना, ये तीसरा स्कंद है, और ये देवी भागवत महापुराण है जो संस्कृत सहित है। ये देखिएगा, देवी भागवतम सभास्तिकम, यहां देखना, अथ देवी भागवतम सभास्तिकम सहमात्यम खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई, और तीसरा सकंद है। ये देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवत भागवते सर्वास्त भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते प्रारंभते। अब इसमें देखना, हे भगवान हे परमात्मा, अपने सदग्रंथ कितने प्यारा प्रमाण दे रहे हैं। इसमें ये सातवां श्लोक समाप्त हुआ, आठवां प्रारंभ होता है। संस्कृत में पढ़िए पहले, हे माता हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, ये हिंदी पढ़ना पड़े, हिंदी है, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। शंकर जी कहते हैं कि मुझे तो आपने तमोगुण क्यों बना दिया और ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। अब यही संस्कृत शुरू होती है, सातवां समाप्त होता है, आठवां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्म न सदा अंबिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया है तमोगुण शंकर जी कहते हैं मैं तमोगुण क्यों बना दिया आपने, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा सत रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिए। और सुवीत है किमो सतोगुण हरि, और भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया है। कहते हैं माता यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो, आप हमें प्यार करती हो, आप हमसे मेहर रखती हो, हम पर मेहर रखती हो, तो हमें इसे गंदे काम में क्यों ला दिया। इन पता है इन भगवानों को भी ये सारा जुल्म हमारे से ही हो रहा है। तो इस कहते हैं मैं तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को कमल जय ब्रह्मा जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, ना रजोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। ये आज के सत्संग ने यहां तक ये भी सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म और काल ये दुर्गा है, और तीनों गुण संकेत रूप में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की तरफ ही पवित्र गीता जी में पूर्ण संकेत है। अब जब परमात्मा आए थे हम शब्द को समझाया करते थे, हम सबको कहते थे कि तुम्हें ये ज्ञान मार्गदर्शक अधूरे मिले हुए हैं, ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। लेकिन उन अनाड़ी लोगों ने काल प्रेरणा से अपने स्वार्थवश हमें अपने भगवान के ही दुश्मन बना दिया। एक समय परमात्मा अपने ज्ञान का जो प्रचार कर रहे थे हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे, उनको कहते थे जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो पूजा करते हैं उनको न कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, ये आपकी गीता जी बता रही है। लेकिन वो अनाड़ी लोग इस बात को ऊपर नहीं आने देते थे, वो कहते थे ये क्या जाने कबीर जुलाहा, हम संस्कृत के ज्ञाता हैं, हम काशी विद्यापीठ में पढ़े हुए हैं, ये अशिक्षित व्यक्ति है, ये क्या जाने प्रभु के बारे में, ये गुमराह कर रहा है लोगों तुम्हें, ये पाखंडी है झूठा है। परमात्मा उस समय हमें समझाया करते थे, हमें समझाते थे कि ये जो मार्गदर्शक तुम्हारे ही ये ठीक नहीं है, और उनको भी अपने एक बच्चे समझकर उन ऋषियों ब्राह्मणों को कहते थे। आदरणीय गिरदास साहिब जी की वाणी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वेदों में लिखा है कि उस परमात्मा के विषय में जो अमृत वाणी होती है उनके अनुयायियों के लिए अमृत स्वर्ग के समान सुखदायी होती है। मेंडी जिंदड़िए उस रब दा पंथ विखट है बाहट, मेंडी जिंदड़िए उस रब दा पंथ विखम है बाहट। कहते उस परमात्मा का जो तुम्हारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णन है वो बहुत ही विकट है, वो तुम्हारे इन सदग्रंथों में नहीं है। जैसे पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक प्रमाण दिया है, कुरान पवित्र कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद अपना भगवान मानते थे वो कह रहा है कि वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा और उस परमात्मा के विषय में किसी तर्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। और ये वही है जिन्हें 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो परमात्मा कहते थे जो साधना पूर्ण परमात्मा की है वो न तो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान थी हुआ, और जिसको तुम भगवान मानते हो वो अपने हाथ खड़े कर रहा है कि मुझे पता नहीं, वो तो किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। इसी तरह हिंदू पुत्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को, मार्गदर्शकों को कहते थे, जो पवित्र वेदों में पवित्र गीता को बोलने वाला भगवान है वो कहता कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के विषय में, वो किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, उसके बिना मुक्ति नहीं और वो तुम्हें मिला नहीं, तो तुम क्यों दुनिया को गुमराह कर रहे हो इस बात का। कहते हैं सच्ची बात ऐसी कह दी जैसे आंख में उंगली दे दी। क्या बताते हैं, गगन मंडल में मैल साहेब का अंदर बना झरोखा, एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, इनमें कौन सरे को जागा, हमको लग गया है धोखा। परमात्मा कहा करते ही ने कि नादान मुल्ला और काजियो, एक की एक तो तुम बकरे की गर्दन काट रहे हो, वो अपनी जान को रो रहा है, तुम उसको कहते हो हम तो हलाल करते हैं, हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं मारते, हम तो प्यार हलाल करते हैं, कलमा पढ़ते रहते हैं, और एक मुल्ला ऊपर चढ़कर मस्जिद में पुकार करता है, हे अल्लाह इस बकरे की रूह को आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। परमात्मा कबीर साहब कहा करते जैसे अल्लाह तुम्हारे बाप का नौकर है और मुल्ला के कहते ही इसे स्वर्ग में स्थान दे देगा। अरे वाह नादानो, यदि बकरे की कुर्बानी करने से और बकरे के ऊपर कलमा पढ़ देने से वो स्वर्ग प्राप्ति कर जाए, इससे आसान कोई तरीका है कोनी, बुढ़े सब न मरना है, मरते समय साय अपना हलाल करवा ले और कलमा पढ़वा दे और या अपने बच्चों पे पढ़ कर दिखा दे, मान जाएंगे काजी मुल्ला तुम्हारी विधि ठीक है। जय या रू ते भीष्ट पठाई तो कर तब तदबीर कबीर लाभाई है। यदि तूने ये पक्का विश्वास है कि बकरे की आत्मा स्वर्ग भेज दी तो अपने बच्चों पे कलमा पढ़ कर दिखा दे भाई, कौन जान दे बकरे ने स्वर्ग में, एक एमपी एमएलए बने बड़े तो टांग खींचे जाओ एक दूसरे की, और स्वर्ग के लिए जिसके लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अपना शीश भी कटा दिया, वाजिद जैसे ने अपना कुएं, फरीद जैसे शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में अपना शरीर फूक जो खूब तपा दिया था, और तुम बकरे काट के स्वर्ग उनको स्वर्ग भेज रहे हो। तो इसलिए भगवान बताते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, एक तो मुल्ला शोर मचा रहा मस्जिद में चुटक, एक ही अपनी जान को रो रहा बकरा जिसकी मृत्यु हो रही है, इनमें कौन सरे को जागा, हमको लग गया है धोखा, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, मेरे तो समझ में आती नहीं, तुमको ऐसा स्वर्ग में चले जाओगे ना बकरा ना यू, दोनों अदला बदला खेले नहीं मुक्ता नहीं मोखा, कलमा रोजा बंग नवाजा कद नबी मोहम्मद फरमाया है। कहते उस महापुरुष ने हजरत मोहम्मद नबी मोहम्मद जी ने कभी नहीं ऐसा जुल्म करने की सलाह दी, तुम तो दोनों अदला बदला खेल रहे हो, आज मुल्ला और काजी जो भी बकरे को या मुर्गी को गाय को मार रहा है, अगले कभी किसी जन्म में वो मुल्ला तो होगा मुर्गा और बकरा, और वो बकरे वाली रूह होगी मुल्ला, वो तुझे मारेगा, दोनों का ये टेट फॉर टेट कभी समाप्त नहीं होगा। कलमा रोजा बंग निवाजा कद नबी मोहम्मद की ना, कद मोहम्मद ने मुर्गी मारी कर्द गले कद दीना। कहते उस महापुरुष ने कब ये मुर्गी मारी थी, कब यहां कब गले पर कर्द दी थी, मुर्गी बकरी चड़ी बुटेरी सोई गऊ गलसीना, जिनको तो भी जिनको विसंत कहा बेका जी ही है, गुंदे सीख भरी ना, उस दरगाह में छुरी नगरिये कर्द कहां से लाया, गुद्दा राता गोसत्ता ता केसर रंग बनाया, गाल देग जय बिस्मल की नार सरसने वाला, साका खोज बता दो वो कौन सरे पहुंचाया, खंड पिंड ब्रह्मंड न होते ना थे गाय कसाई, आदम हवा न हुजरा होते कलमा बंग न भाई, उसका दर ने कुदरत सिर जी जब क्या खाना खाई, दास गरीब कहे वे काजी बेच गुण चतलाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मर्दाने मर जा मनी पर मार है, ऐसा मैल अनूप पलक में धार है, जोरा बुरी बला बलाय जीव जग फूच है, पलक पैर छन माही नंगाड़ा कूच है, सुरत सुहंगम नेस पेश हो बावरे, बदी बिदारो बेग धनी को डावरे, दम की डोरी खोज दरीबा खूब है, सत अगर दीप सत लोक अजब महबूब है, सूतर पुत्र गर नार छा सब गातरे, हरे हम महबूब कहां से लाया ने संगी ना कोई साथ रे, अंश अकेला जाव हिरंबर हेतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे, कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संगपाल की, हरे हम महबूब गज गए पर दल ठाठ निशानी काल की। के जिस यहाँ के ठाठ को देखकर तू फूला नहीं समा रहा है, ये तो तेरी मौत है या तेरी सात है, तेरी इसी में आस्था रह जाएगी, फिर तू यही पशु बनकर घूमेगा इस संपत्ति के चारों तरफ। हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, हक हलाल पहचान इस बुरे कर्म ने दूर कर दे, हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रबरू गऊ क्या सूरे, हिंदू खावे हदीस मुसल तज मासरे, तू जाने दरिया तेरा है कासरे, दरिया में कासी नहीं तेरा भाई, तुम गलत साधना कर रहे हो पार होने की, ये विधि ठीक नहीं तुम्हारी। तीतर बुरी तीतर चड़ी बुटेर भक हिलवान रे, अरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल रहमान रे, रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, या पकड़ पछाड़ी रूह कहो यू क्या किया। दिन में तबू कैमरे रोज जा करा और श्याम ने गा मार दी, बकरी मार के खाली, मुर्गी की नड़ तोड़ दी, तो दिन वाली बात तुम्हारी अच्छी मानते हैं भगवान के नाम पर भूखे मरे। वैसे तो वो कोई विधि नहीं है परमात्मा के पाने की, वो तो विधि है अलग है, पर चलो वो तुमने भगवान के नाम सारा दिन परहेज रखा और श्याम ने मुर्गी मार दी, वो तेरा ग्रज वो यो फिर के भक्ति हुई भाई। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, पकड़ पछाड़ी रू कहो ये क्या किया, खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, वो देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता, गले क्यों काट रहा है वो भगवान देख रहा है, ऐसे डूबे कुटुंब होत है गर करे, अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परखरे। इस प्रकार परमात्मा उन्हें समझाया करते थे, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही आड़े हाथों लिया करते थे। क्या कहते हैं, तो परमात्मा ने ये ज्ञान देते थे तो दोनों ही हिंदू और मुसलमानों के वो मार्गदर्शक जिनकी रोजी रोटी बंद हुए थी परमात्मा के दुश्मनों के, कबीर परमेश्वर के वो दुश्मन बन गए। बनारस में काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल परमेश्वर का शिष्य हो चुका था, तो वहां के ब्राह्मण लोग और मुसलमान लोग डरते भी थे कि हम राजा के पास शिकायत लेकर जाएंगे तो ये हमारी नहीं सुनेगा क्योंकि ये इनका शिष्य हो गया। एक दिन सिकंदर लोधी वहां चले गए क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे और काशी का नरेश उसके अंतर्गत छोटा राजा था। वहां पहुंचे तो मुसलमानों को दाव लग गया काजी और मुल्लाओं का कि आज हमारा राजा आया है मुसलमान, आज हमारी सुनवाई होगी। सभी के सभी इकट्ठे होकर के सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए मुसलमान मुल्ला और काजी, साथ में वो शेख तकी भी गया हुआ था जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी जी का। लोग इकट्ठे हो गए, भगवान सिकंदर लोधी से कहा, भगवान हे राजन हमारा तो जीना हराम कर दिया, एक कबीर नाम का व्यक्ति है हमारे मुसलमान धर्म की तोहीन करता है, अपने आप को भगवान बताता है। इतनी दुनिया को देखकर राजा ने सोचा भाई कोई ज्यादा ही दुखी कर रहा है, कहा बुलाओ उसको। 10 सिपाही गए एक आदमी ने पकड़ने खातिर, वहां क्या किया कि सिकंदर लोधी ने कहा एक गाय लाओ क्योंकि हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द से वचन से मारकर मारा था और उनसे वो जीवित नहीं हुई थी, तो परमात्मा ने स्वयं रूप आए थे उस हजरत मोहम्मद की नियाद किया था परम पिता को, मेरी इज्जत रखो मेरे प्रभु, उन्होंने आके वो जीवित की थी लेकिन वो शब्द रूप में थे, वो किसी दिखाई नहीं दे थे, मोहम्मद मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद मुसलमानों ने ये मान रखा था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी तो परम शक्ति थी, नबी थे भगवान के, उन्होंने गाय को शब्द से मारकर शब्द से ही जीवित कर दिया था। फिर उसी गाय को जिस दिन हजरत मोहम्मद ने ये लीला की थी उसी का दिन मनाने के लिए, उसको याद रखने के लिए एक त्योहार रूप में उनके जाने के सैकड़ों वर्षों के बाद कुछ व्यक्तियों ने सलाह मशुरा बनाकर एक गाय बिस्मिल करने लग गए। मांस नहीं खाते थे मुसलमान, ऐसे काट कर और वो दिन याद रखने खातिर के सहज सहज काट देंगे, धीरे धीरे दर्द ना होगा, कलमा पढ़ देंगे इस पे और वो याद रही रहेगी कि इस दिन हमारे मोहम्मद जी ने ये गायें जीवित की थी। तो परमात्मा कबीर साहब कहा करते तुम रिश्त करो उन महापुरुषों की, उन्होंने तो गायें मार कर जीवित कर दी थी और तुम जीवित कर नहीं सकते, तो मारने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, वो याद रख लो इस दिन जैसे किया था अपना हलवा खीर बना के खा लेते ने कभी यू के बुराई चला दी और नाम दे दिया कि हमारे पूर्वज तो ऐसे ही करते आए नहीं। तो उसी दृष्टिकोण से क्योंकि पहले राजा लोग भगवान से डरने वाले थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान, भगवान से बहुत डरते थे, तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि पहचान भी हो जाएगी, जब भगवान होगा शक्ति होगी तो हाथ जोड़ दूंगा और नहीं होगी तो कत्ल कर दूंगा। एक गाय मंगा ली, कबीर साहब को भी बुला लिया पकड़ जाए। कबीर साहब से कहा कि कहो कबीर तुम कौन हो, अब कैसे बैठे मौन, अब क्यों बैठा है तू, तू कौन है बता, तू अपने आप को अल्लाह कहता है, अगर तू अल्लाह है तो इस गाय को हम काट देते हैं। बिस्मिल कर दी सिकंदर लोधी ने गाय को, वहीं पर दो टुकड़े करवा दिया, गर्भवती थी वो गाय, मां बेटा के चार टुकड़े हो गए और वहां पर खून बह चला। सिकंदर लोधी ने कहा यदि तू अल्लाह है तो हमारे हजरत मोहम्मद की तरह गाय को जीवित करके दिखा दे, नहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमात्मा बोले गाय को जीवित कर देने मात्र से प्रभु की पैदान नहीं होती, और भी बहुत गुण होते हैं परमेश्वर में। पर और मैं पूर्ण परमात्मा हूं, हम ही अलक अल्लाह है कुतब गोस और पीहीरी, गरीब दास खालक धनी हमरा नाम कबीरी, मैं कबीर सरबंग हूँ सकल हमारी जात, गरीब दास पिंड प्राण में है युगन युगन का साथी। खड़े हुए परमात्मा और एक थप की माँ का मारी, एक बच्चे के शरीर का लगा दी, दोनों के शरीर ऐसे जुड़कर और खड़े हो गए दोनों माँ बेटा, और डेगची भर दी दूध की बाल्टी ठोक दी परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब क्या बताते हैं, फिर परमात्मा ने डेढ़ घंटे तक प्रवचन दिए उन नादान संत नादानों को कि तुम एक पिता की संतान हो, तुम मेरे ही बच्चे हो। सुन राजी काजी काशी जोरा दीन का काजी खिलस करंते, गरीब दास उस सरे में झगड़े आन पड़ते। सुन राजी काजी नहीं, सुन काजी राजी नहीं, आपे अलह खुदा, गरीब दास किस हुक्म से तन पकड़ छाड़ी गाय, किसका आदेश है तूने गाय मार दी, ये भगवान का प्राणी है, तुझे मरने का कोई अधिकार नहीं है। तब बोले गौ आपनी अम्मा है इस पर छुरी मत बाह, गरीब दास घी दूध ने ये सब ही आत्म खावे, ये गाय आप सबकी माँ है, जो दूध प्यावे वह माँ कहलाती है, और जिस ममड़ी का दूध पीवत हो घरत घरत दूध बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करत हो लेकर कर्द कसाई, जिस माँ का तुम दूध पीते हो घी खाते हो और फिर उसी को तुम काट रहे हो, तुमने को कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि। गऊ तुम्हारी अम्मा है ता पर छुरी नबाह, गरीब दास घी दूध को सब ही आत्म खाए। गऊ तुम्हारी माता है पीवत जिसका दूध, काजी गरीब दास काजी ही कुटल तने कतल किया औजूदे। ऐसा खाना खाइए माता देना हो पीड़े, गरीब दास दर गए सरे तेरे गल में पड़े जंजीरे। काजी पटक कुराने को उठ गए सर पीटे, गरीब दास जुल है कही ये बानी अकल अजीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेर, गरीब दास मुल्ला मुरग अपनी अपनी बेर, मुल्ले मुर्गे से मुल्ला भय मुल्ले से फिर मुर्ग, गरीब दास दो जग दसे तुमने पावे नहीं स्वर्ग, के पहले मुर्गा अब तुम मुर्गा को मार रहे हो, फिर मुर्गा तुम्हें मारेगा, तुम दोनों ही नरक में जाओगे, कोई सी को स्वर्ग नहीं मिलेगा। काजी कलमा पढ़त है बाचे फेर कुराने, गरीब दास इस जुल्म ते खर डूबे दोनों जिहान, दोनों दीन दया करो। हो परमात्मा कहते हैं तुम दोनों धर्म वाले जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सो दिन के तुम दया करो, दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीब दास सूर गऊ में एक कह बोलन हारे। दोनों गऊ मर सूर में एक सा ही प्राणी है, एक ही जैसा जीव है, एक जैसा ही दर्द होता है। सूर गऊ में जीव एक है, गाय बखो ना सूरे रहे। सूर गऊ में जीव एक है, गाय बखो ना सूर। गरीब दास सूर गऊ में दोहू का एक दूरे। मुल्ला से पंडित भय, मंडित पंडित से भय मुल। गरीब दास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। क्या कहते हैं के देखो, आज तुम ब्राह्मण हो, आज मुल्ला कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हमारी साधना सही है, हिंदू काफिर है, ये सही भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। उधर पंडित कहते हैं मुसलमान काफिर है, ये मांस खाते हैं, ये पापी है। परमात्मा कहते हैं तुम द्वापर तक अपना हिसाब देखो, कोई भी दूसरा पंथ मजहब नहीं था। तो आगे आपके संस्कार एक दूसरे से मिले जुले हैं, कभी आज मुल्ला है वो अगले जन्म पंडित भी हो सकता है, आज पंडा है वो अगले जन्म मुल्ला भी बन सकता है। तुम अभी अपने सुल्लम सुल कर लो, अपना प्यार बना लो, छोड़ दो बुराइयों को, एक भक्ति एक परमात्मा की साधना कर लो। मुल्ला से पंडित भय, पंडित भय से भय मुल। गरीब दास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल। हिंदू झटके मारे ही काजी करे हलाल, गरीब दास दोनों दीन का थारा होगा हाल बेहाल। सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन राते, गरीब दास हक बोलता और मारे जीव अनाथे। एक तो हक हक कहता है मैं सही कर रहा हूँ, और बेहक करता जाते हैं, तन सीने को खोल चाम पाड़ देता है, गऊ का गाय का बकरे का झोटे का ऊंट का कोई भी थरटाल को ना। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसमें लाल चलूले, गरीब दास उस कलंगी का कहां गया वो फूल। देख कितना सुंदर भगवान ने मुर्गा बना रखा, कितनी सुंदर उसके सिर पर कलंगी ना रखी थी, और तब ने वो काट पीट का कंडम कर दिया। एक महात्मा जावा था और दो भगत दो नकम में एक मुर्गा मार के और उबालना गिरे उसने सब्जी बना हुए। वो महात्मा बोला भाई क्या कर रहे हो? वो बोले बाबा जी मुर्गा बनावे है, मुर्गा बना रहे हैं। संत ने सोचा बोला भाई मुर्गा दिखाई और मुर्गा के ऊपर बनाओ भाई तुम। ने बोला के देखेगा देख, वो ढक्कन उठा दिया उस पतीले का, उसमें वो आड्डों समेत उबलना गिरा, वो मुर्गा काट रखा। ने बोला रे नकुम्मे तुमने तो बना बना बिगाड़ दिया, बना तो भगवान ने रखा था यू, तुम के बनाओ नकुम्मे जो के बना हुए तुमने बिगाड़ दिया बना बनाया। तो यहां वही कह रहे हैं, सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन राते, गरीब दास हक बोलता और मारे जीव अनाथे। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसने लाल चलूले, गरीब दास उस कलंगी का वो कहां गया वो फूल। सुन मुल्ला माली अल है ये फूल रूप संसार, गरीब दास गति एक सब पान फूल फल डारे। अब जैसे कोई माली बगीचा लगाता है, कहते हैं ये पूरा संसार उस एक माली का बाग है, और उसने बड़े प्यार से इसको सींचा हुआ है, और माली का कोई एक फल या एक टहनी एक पौधा भी कोई तोड़ देता है उसको बहुत दुख होता है, वो उस व्यक्ति से प्यार नहीं करता, उसकी बहुत मेहनत होती है। ऐसे ही तुमने एक मुर्गा भी उस परमेश्वर का मार दिया, मालिक का मार दिया, तो तुम्हारी खैर नहीं है। क्या बताते हैं, बासमती चावल पके, कहते हैं मैं बताता हूँ ये खाना खाया करो, बासमती चावल पके गर्त खांड टुकड़ारे, गरीब दास करो बंदगी ये गंदे काम निवारे। ये कूड़े काम निवार, ये छोड़ दो बुराइयां और बासमती कितना बढ़िया चावल उसमें खांड डाल ले और थोड़ा सा देसी घी डाल ले, आनंद ना आ जाएंगे। इसको बाड़ में खान लग रहे तो मैं तेरा की देवी है। बासमती चावल पके गर्त खांड टुकड़ारे, गरीब दास कर बंदगी ये कूड़े काम निवारे। दू फुलके धोवा दाल डाल कर हलवा रोटी खा, गरीब दास सुन काजी सुनिए मांस मिट्टी मत खा। तीसों रोजे खून करके फिर तस्बी देते हाथ, गरीब दास दर गए सरे तुमने बहुत करी है कात। इन बातों को सुनकर कहते हैं सा सिकंदर के पास परमात्मा को पकड़ कर ले गई। सहा सिकंदर कह गए ये काजी पटक कुरान, गरीब दास जुलहदी पर इब हो सके चाताण। उस जुलहदी माने उस दानक पर जुलाहे भगवान पर इब खे चाताण शुरू होती है। दस ऐसी तलबा हुई ही पकड़ जुला दी लाए, गरीब दास उस कुटन को हो मारत नहीं संकाए। ऐधी लेगे बांधे कर साहस कंदर पासे, गरीब दास का जी मोला ये पगड़ी बह आकाश। क्या देखांगे इसने हमारा हमारा राजा आ गया है और ये पकड़ कर लाओ है। काजी 5000 थे ये मुल्ला पिटे सी ही सी, गरीब दास ये जुलहदी काफिर बिस्वे बीश। जो कह रहे हैं ये काफिर है, ये मांस मिट्टी भी नहीं खाता, ये काफिर है। मेहर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस ना खावे, गरीब दास गुदा तलो और मोमन भी लो बुलाए। कहते इसके बाप ने भी पकड़ लाओ, इसकी मां ने भी पकड़ लाओ। और यो तय नो कह इसका दया धर्म नहीं, यो मांस मिट्टी भी ना खाता। अरे निरंजन दन तेरा दरबार। उस परमात्मा को कहते हैं मुल्ला काजी कहें ये तो बेरहम है जो मांस भी और मिट्टी मांस नहीं खाता, ये उसको उल्टा कह रहे हैं निकम्मे। मेर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस ना खावे, गरीब दास गुदा तलो मोमन लो बुलाए। मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए, गरीब दास उस सरे में एक पकड़ पछाड़ी गाय। एक गाय को काट डाला। सा सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौने, गरीब दास गुजरे नहीं इब क्यों बैठा है मौने। परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलख अला है कुतुब घोष और पीरी, गरीब दास खालक धनी हमरा नाम कबीर। परमात्मा ने कहा कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार वो अल्लाह अकबर मैं हूँ, और सारी सृष्टि खालक धनी पूरी संसार सृष्टि का मालिक हूँ मैं। मैं कबीर सरबंग हूँ सकल हमारी जात, गरीब दास पिंड प्राण में है जुगन जुगन का साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दर्ग खंड अजूदे, गरीब दास उस गौ का इब पीवे जुल्हा दूदे। चुटकी तारी थाप दे गऊ जगा जवाई बेग, गरीब दास दूजन लगे हे दूध भरी ता डेग। दूध की बाल्टी ठोकी थी भगवान ने गा के तरह बच्चा लगा के और दूध की बाल्टी भर दी। ये पर्चा प्रथम भया सा सिकंदर पाशे, गरीब दास का जी मुला हो गे बहुत उदास। अब काजी मुल्ला सा सिकंदर देख करे बहुत बहे मुस्कीन, गरीब दास गत शेर की वा थरके दोनों दीने। परमात्मा खड़े हो गए और जो आ रहे थे ना नकली शिकायत करी वो तो खिसक गए, और जो पुण्यात्मा वो हजारों की संख्या में देखने आए थे ओए होए उन्होंने उस कबीर परमात्मा से उपदेश लिया उस लीला को देखकर। और सिकंदर लोधी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकेट समेत। खड़े रहे जो खंब गति सहा सिकंदर लोटे गरीब दास जुल्ला कहे लाओ कहां वो गोठ। उन काजियों से कहते हैं वो कहां वो तुम्हारा मांस गाय काटी थी लाओ कहां वो मांस। और सिकंदर लोधी चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करता है सिख दिल्ली का बादशाह। परमात्मा कहते हैं अगरम अगरम छोड़ दो तुम मानो हमारी सीख गरीब दास के साहा से वो डगर अबंक डगर है दीख। काजी मुल्ला भाग गए गातन पोतन लाद गरीब दास गति को लखाये जुल्हा अगम अगाद। अब क्या हुआ सिकंदर लोधी चरणों में लेट गए और अक्षमा याचना की भगवान माफ कर दो मेरे से गलती होगी। परमात्मा ने कहा कोई बात ना भाई। परमेश्वर को और वो मुंह बोले मात पिता को कबीर साहब के नीरू और नीमा को पालकिया में बैठा के न्यारी न्यारी और उनकी झोंपड़ी तक राजा ने आदर के साथ वापस करवाया। अब फिर क्या होता है कबीर साहेब इव घर तक तो न पहुंचा दिए। फिर कबीर साहेब बाहर घूमने के लिए निकल गए आगे शेख की खड़िया सिकंदर लोधी का राजा का पीर। उसने एक जंतर मंत्र करके एक मूठ मारी सिद्धी छोड़ दी कबीर साहेब पर। हाँ उसने एक सिद्धि छोड़ दी कुत्ते के ऊपर। सिकंदर लोधी के पीर ने शेख तकी ने कुत्ते के ऊपर सिद्धि छोड़ दी। कबीर साहब का गो कुत्ता मर गया नोरे खान की खातर के मैं शक्तिशाली हूं। मतलब आप जैसे बालक छेड़ा छेड़ा करे ना मतलब किसी तो लड़ना उत पर ईट किता किता मारन लाग जागर दूर दूर थे तो वो नो छेड़ा छेड़ा था। परमात्मा ने वो कहा कि जो इस कुत्ते का म्यूट लगी है यह सिद्धि जिसने मारी है वो वापस उसी के राजा जिसने छोड़ी है। वो उल्टी आके शेख तकी के लगी शेख तकी मर गया। अब लोग बाजे गए सिकंदर के पास के हे भगवान वो शेख तकी आपका पीर मार दिया। सिकंदर बोला लाओ पकड़कर किसने मार दिया। कबीर साहब को पकड़ दे गए किसने मार दिया। क्या बताते हैं फिर परमात्मा को हम पकड़ कर ले गए तो वो दूसरे जो और खड़े थे मुल्ला और काजी मुसलमान वो परमात्मा के साथ बदतमीजी करने लगे। उस कबीर साहब का मुख के मारन लग गए कोई लात मारन लग गया। परमात्मा ने एक को जरा सा धक्का दिया था जो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था वो ऐसा गधाका उठा उसकी कांच लिकट गई वो पड़ गया। अब और वो तो फिर दोनों वो मर गया था दोनों के जो है ना एक एक लात मारी वह जीवित हो गए और चलते बड़े। अब गरीब दास जी ने ज्यों का तो लिखा है वर्णन ये सत्य है। तोरा से सरा उठा दिया सुनने मंदरता से गरीब दास उस साहा को काजी आने पाश। काजी मुल्ला यूं कहे कबले जहां अपना गरीब दास उस दुल्हिदी को मारे मूठ चलाए। सात की एलम करे मारे मूठ अचान गरीब दास उस दुल्हदी के आग्रह मर गया स्वान। सिकंदर उस सात तकी ने शेख तकी ने जब एक मूठ मारी सिद्धि मारी कुत्ता मर गया उनके सामने कबीर साहब के सामने। स्वान मुआ करुणा करी ही पकड़ कान उठाया गरीब दास सुन मूठ है तू सात की पर जाए। कुत्ते का कान पकड़ कर परमात्मा ने खड़ा कर दिया गुट भाई और जो यह सिद्धि या तेरे इस पे लगी है उल्टी है उससे गजा जिसने मारी है। जो धारे सोई लह ये मुठी मूठ लगी सरसी से गरीब दास वो शेख तकी मर गया बिस्वे बीश। शेख तकी मर गया। काजी मुल्ला फेर गए सहा सिकंदर पाश गरीब दास उस पीर की मजलस धरो ने लाश। सिकंदर लोदी बोले जी उस अपने से अपने शेख तकी ने संभालो, अब उसने दबा दबू दो कि तो मर मरा गया शेख तकी। सिकंदर लोदी बोला भाई क्यों कर मरा, किसने मारा, किन मारा, कैसे मुआ कहो समझाओ समझाओ मोही। गरीब दास उस जुलहदी के गर्दन बाहो लोही। फिर दूजे ऐदी गए पकड़ मंगाया बेग, परमात्मा को फिर पकड़ लाए। गरीब दास मानो कहे तन दूध भरी क्यों देग। काजी मुल्ला सब कहे मार मार तू मारे, गरीब दास इसे कबीर की गर्दन पे तलवार। कहते सबने कहा कट दो इसने, कट दो मार दो, हाँ इसने नो कर दो। शेख तकी मार दिया। सा सिकंदर को पिया, क्रोधित होगा सिकंदर लोधी। सा सिकंदर को पिया नैन बहे बकराल, गरीब दासा तकी का यही कबीर है काल। गौर खुद पातशाह जदे मैं ते मारी है मूठ, गरीब दास कसर करी ही चले उलहदी जुलहदी ऊठ। अब कभी साहब उठ कर चल पड़े, ने बोले मैं क्यों मारू था इसने, मेरा के मतलब मारन का। तो काजी मुल्ला बांगती लगी गर्दनी पांच, गरीब दास काजी पड़ा वहां निकल गई थी कांच।